समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। रोजाना की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी नमस्कार।
Hello, Sarfirozi. Hello, and good day, everybody. You're tuned to Parikraman 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay. And with me today is of course, my co-host, Sarfirozi. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया।
ईडी कंडक्ट सर्चेस ऑन कंपनीज लिंक्ड विद अनिल अंबानी एंड रिलायंस पावर इन मुंबई एंड हैदराबाद।
इंडिगो ने पश्चिम एशिया और इस्तांबुल आने जाने वाली उड़ानों की टिकट रद्द करने पर मिलने वाली पूरी छूट 31 मार्च तक बढ़ाई।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी लीडिंग इन 60 सीट्स इन नेपाल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस।
और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन आज रात अंतिम आठ के मुकाबले में चीन के ली शी फेंग से खेलेंगे।
यस एंड नाउ लिसनर्स, इट्स टाइम फॉर अ सेगमेंट डेटलाइन इंडिया in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level, and today we will talk about women empowerment initiatives.
तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो।
Yes, and as we move closer to International Women's Day on 8th of March, this Sunday, we come together to recognize and celebrate the strength, achievements and remarkable spirit of women in our lives. A nation's economic strength is closely tied to the well-being and participation of its women and children. When girls grow up healthy, educated and safe, they are better able to learn, work and contribute meaningfully to society.
बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन स्तर के लिए अनिवार्य है। ये न केवल गरीबी के चक्र को तोड़ता है और बेहतर मातृत्व शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाकर सामाजिक चुनौतियों से लड़ने की क्षमता भी देता है। और शिक्षित और स्वस्थ लड़कियां स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र की नींव है। और अभिषेक, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये दिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का अवसर देता है और विभिन्न क्षेत्रों में सफल महिलाओं की कहानियां समाज को प्रेरणा देती हैं।
Yes, indeed, Sarfirozi, and International Women's Day is a global celebration of women's contributions to society, culture, science, leadership, and every field imaginable. Today's program is a special run-up celebration focusing on how women across India are leading in every field from science and sports to entrepreneurship and governance. And what's even more inspiring is that this progress has been strengthened by several initiatives launched by the government to empower women socially, economically and educationally.
बिल्कुल अभिषेक, महिलाओं को सशक्त बनाने से सशक्त परिवारों, समृद्ध समुदायों और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। इसे समझते हुए ही सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पिछले 10 सालों में कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। सरकार ने महिलाओं की कौशल, ऋण बाजार और आजीविका तक पहुंच सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है, जिसमें ग्रामीण और वंचित महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया है। और सरकार का लक्ष्य है 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाना, जहां प्रत्येक महिला प्रगति की समान भागीदार बने।
एंड ड्राइविंग दिस विजन फॉरवर्ड, द गवर्नमेंट इज वर्किंग थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो of schemes from self-help groups, SHGs, and targeted credit to drone technology and entrepreneurship platforms. It has also invested in digital tools for financial inclusion and cooperative networks. These advancements are positioning India as a global model for women's economic leadership.
अभिषेक, आर्थिक पहलों की बात करें तो महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए निवेश करना, ताकि वो स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जिंदगी जी सके। इससे न सिर्फ उनका भविष्य उज्जवल होता है, बल्कि परिवारों, समुदायों और पूरे राष्ट्र का विकास होता है।
Yes, and under the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, the सुकन्या समृद्धि योजना provides financial security to a girl child. It is a government saving scheme that helps parents and guardians save money for the girl's future needs. And the scheme gives high interest rates, tax benefits and security, encouraging families to invest early and support girls' growth and independence.
इसी तरह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के तौर पर एकजुट करता है, जिससे समुदाय की भावना और आपसी विश्वास मजबूत होता है। इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं और उनके परिवारों को कौशल प्रशिक्षण, किफायती ऋण जैसी सहायता प्राप्त होती है, जिससे वो छोटे उद्यम शुरू कर पाती हैं, उच्च आय के अवसरों की ओर बढ़ पाती हैं और अपनी मौजूदा आजीविका को बेहतर बना पा रही हैं।
Yes, absolutely. And the Namo Drone Didi scheme is a transformative central sector initiative. It empowers rural women by equipping selected women self-help groups with drones to provide rental services for precision agriculture, primarily spraying liquid fertilizers and pesticides while introducing advanced technology to farming and creating sustainable income opportunities.
बिल्कुल अभिषेक, जब महिलाएं उद्यमी के रूप में आगे बढ़ती हैं तो पूरे परिवार को स्थिरता और कई अवसर मिलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इनमें एक पहल है लखपति दीदी, जो बहुत ही प्रमुख है। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक होती है। ये आय स्थायी आजीविका गतिविधियों, मजबूत कौशल और ऋण तथा बाजार तक बेहतर पहुंच के माध्यम से प्राप्त होती है, जो वित्तीय स्थिरता, आत्मविश्वास और सामुदायिक नेतृत्व का प्रतीक है।
Yes, and the Union Budget 2026-2027 has introduced provisions for self-help entrepreneurs via the She Mart, and this new program will establish community-owned retail outlets in every district, serving as dedicated platforms for marketing products created by women from self-help groups, SHGs and rural areas, thereby opening up fresh market opportunities.
और इसी तरह एक पहल है स्टैंड अप इंडिया योजना, जो विनिर्माण, सेवा, व्यापार या कृषि से संबंधित गतिविधियों में उद्यम शुरू करने के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने को आसान बनाती है। स्टैंड अप इंडिया न केवल स्टार्टअप को वित्त पोषित कर रहा है, बल्कि सपनों को भी आकार दे रहा है, रोजगार सृजित कर रहा है और आर्थिक स्वतंत्रता का निर्माण कर रहा है।
एंड द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च्ड इन जून 2020 बाय द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स provides collateral free working capital loans to street vendors, especially women impacted by the COVID-19 pandemic.
स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से लड़ना है। ये कार्यक्रम पूरक पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ECC, नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वच्छता, स्तनपान और पूरक आहार के बारे में जागरूकता प्रदान करता है।
Yes, and Anganwadi centers deliver essential nutrition besides also serving as joyful early learning spaces, and they provide play-based preschool education for children aged 3 to 6.
पोषण भी पढ़ाई भी महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक प्रमुख अभियान है, जिसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को आरामदायक प्रारंभिक शिक्षा केंद्रों में बदलना है।
सो सर फिरोजी, टू राउंड अप आवर डिस्कशन टुडे इन आवर डेटलाइन इंडिया section, India has adopted an integrated approach to advancing the health, education, safety and security of women and girls. Flagship umbrella programs such as Saksham, Anganwadi and Poshan 2.0, Mission Shakti and others ensure strong convergence across ministries, maximizing reach and impact at the grassroots level. Digital platforms like Poshan Tracker enhance transparency, accountability and efficient service delivery. and by investing in the well-being, education and protection of women and girls, these initiatives strengthen families, uplift communities and build human capital. They contribute directly to inclusive growth, gender equality and long-term national development.
बिल्कुल अभिषेक, विकसित भारत का आधार यही है जहां हर महिला अपनी समृद्धि का खुद निर्माण करे और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता भारत के समावेशी और विकसित राष्ट्र बनने की आधारशिला है।
Yes, and as part of a series People's Padma on Akashvani, in upcoming episode we speak to Dr. Chandramouli Gadam Manugu, former program director at the Defense Research and Development Laboratory. And to listen to the podcast, tune into 100.1 Akashvani Gold today, evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will be broadcast again tomorrow morning at 9:10 a.m.
श्रोताओं, अब आपको लेकर चलेंगे देश भर की परिक्रमा पर। सबसे पहले चल रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
श्रद्धालु पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट registration.touristcare.uk.gov.in तथा मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पर्यटन सचिव धीरज गब्रियाल ने बताया है कि इस वर्ष चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के पंजीकरण अनिवार्य है। जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाएंगे उनके लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा 17 अप्रैल से शुरू की जाएगी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
यस, एंड द दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, द फिफ्थ मेजर एक्सप्रेसवे बीइंग डेवलप्ड इन द कंट्री, इज सेट फॉर कंप्लीशन बाय मार्च 2027 एंड वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पोंडेंट।
The Delhi-Amritsar-Katra Expressway will reduce the distance from Delhi to Katra from 727 to 588 kilometers, cutting travel time from 14 to about 6 hours. Project Director, National Highway Authority of India, Project Implementation Unit Jammu, Rajiv Kumar said, the work has gathered pace again as the deadline for its completion has been fixed for March next year. The National Expressway 5, NE5, is the fifth major expressway being developed in the country and has been conceptualized as a religious corridor supplementing existing air and rail connectivity. It will connect two of the most prominent pilgrimage destinations, Shri Harmandir Sahib, also known as the Golden Temple in Amritsar, Punjab, and Mata Vaishno Devi Shrine in Katra town of Riyasi district. A large number of devotees visit Mata Vaishno Devi annually and they currently rely on rail and air travel. The expressway would provide a third option, enabling Delhi-Katra travel in approximately 6 or strategically, the expressway is significant for Jammu and Kashmir due to its proximity to the international border. Running parallel to sensitive border areas, the corridor is expected to facilitate faster deployment and improved mobility for defense forces. Advanced segmental bridge construction technology, a method adopted during the construction of Delhi Metro and Dwarka Expressway, is being used in the current project. Keeping the upcoming annual Amarnath Yatra in mind, a target has been set to complete nearly 30 kilometers of the Jammu Kathua stretch before the start of the pilgrimage later this year. This is N. Gulshandana for Parikrama from RNU Akashwani Jammu.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेतृत्व में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास पर हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी दे रहे हैं।
India's space program has come a long way since its inception. It started in early 1960 when ISRO used an American satellite on experimental basis. The founding father of Indian space program, Dr. Vikram Sarabhai, had recognized the benefit of space technology for India. Today, the country's space program has taken a significant step through landmark achievements such as Chandrayaan, Mangalyaan, and now Gaganyaan human space mission. Speaking during an event in Bengaluru recently, the former chairman of ISRO, A.S. Kiran Kumar, has pointed out that ISRO could achieve success due to its ability to adopt new technology and move ahead.
India not only built its space capability, but it is also trying to move ahead. Last year, we launched along with Americans in a collaborative mode a satellite called NISR. Today, this satellite, why I am mentioning to you, is very important because it is capable of providing information about the entire Earth, including what is the soil moisture at about 20 to 30 meter resolution for the entire globe. It can study plant-based information, a whole lot of things. And India was able to do it because it adapted the technology and started moving ahead.
ISRO's success in adopting advanced space technology has bolstered growth and forged global partnerships. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
Yes, and Sikkim is gearing up to host Sikkim International Film Festival in Gangtok tentatively from 19th to the 22nd of March, and we have more from a correspondent.
Information and Public Relations Department, Government of Sikkim, yesterday held a coordination meeting with representatives of the film fraternity from the state. During the meeting, it has been informed that an open category short film competition, which will be open to filmmakers from Sikkim, North Bengal, Bhutan and Nepal, is being organized as part of the festival. Filmmakers have been invited to submit short films of a maximum duration of 30 minutes across all themes and genres, encouraging creative freedom for our participants. Selected entries will be screened during the festival in Gangtok. The department asked members of the film fraternity to actively participate in this competition and contribute to making the festival a vibrant platform for showcasing regional cinematic talent. It was also announced that representatives from the local film industry will be included in the preview committee and jury panel. Filmmakers have additionally been invited to assist in moderation and interaction sessions during the screening of films. Moinak Chatterjee from Akashvani News Gangtok for Parikrama.
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पिरड़ी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान के राफ्टिंग केंद्र में 14 दिवसीय बेसिक राफ्टिंग गाइड कोर्स और इंटरमीडिएट कायकिंग कोर्स आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के जवान भी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
कुल्लू जिला के पिरडी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान के राफ्टिंग केंद्र में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 65 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। ये प्रशिक्षण शिविर 3 मार्च से शुरू हुआ है और 16 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम में कुल्लू, मंडी, चंबा, शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों के प्रतिभागियों के अलावा भारतीय वायुसेना के जवान भी प्रशिक्षण लेने पिरडी पहुंचे हैं। जल क्रीड़ा अनुदेशक संजीव चौधरी, डिंपल कुमार, विक्की और अक्षित कुमार प्रशिक्षुओं को राफ्टिंग, कयाकिंग तथा जल सुरक्षा से जुड़ी बारीकियों का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें जल क्रीड़ा से जुड़ी विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण, जैसे नदी के तेज प्रवाह में राफ्ट संचालन, संतुलन बनाए रखने की तकनीक, सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग और टीम वर्क के साथ साथ आपसी समन्वय का महत्व शामिल है। इसके साथ ही नदी में सुरक्षा उपायों और रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि आपदा या दुर्घटना की स्थिति में प्रभावी ढंग से बचाव कार्य किया जा सके। गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान समय समय पर रिवर राफ्टिंग, रैंपलिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है, ताकि इनके माध्यम से न केवल युवाओं को साहसिक खेलों में दक्ष बनाया जा सके, बल्कि पर्यटक सीजन के दौरान साहसिक खेल गतिविधियों में सैलानियों की रुचि को देखते हुए भी युवाओं को साहसिक खेलों में करियर बनाने के साथ साथ आपदा के समय बचाव कार्यों में सहयोग देने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार के इस उपक्रम में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय युवा पर्यटकों को राफ्टिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों के माध्यम से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
एंड फ्रॉम शिमला वी टर्न अटेंशन टू मिजोरम And Aizawl, the capital city of Mizoram, commemorated its foundation day with vibrant multi-day celebration organized by the Aizawl Municipal Corporation. The date of 25th February 1890 is widely recognized as the official foundation day of the city, which today is home to nearly half of Mizoram's population. And we have more from a correspondent.
Although comparatively young measured against many other Indian cities, Aizawl has experienced significant development over the years, particularly in terms of population growth and urban infrastructure. In recent years, the city has also witnessed an increase in tourist arrivals. Visitors are drawn by the region's culture, hospitality, and the strong sense of mutual respect among residents, which is especially visible in the city's disciplined adherence to traffic regulations. To mark Aizawl Day, the Aizawl Municipal Corporation organized a three-day celebration featuring a range of activities for residents and visitors. Owing to strong public demand, the event was extended by an additional day to allow more people to participate. Aizawl Mayor Larry Nengasailo expressed his delight at the large turnout for the celebrations. He said that Municipal Council was first established in Aizawl in 2010 and later upgraded to Municipal Corporation in 2015. The mayor added that the AMC continues to undertake initiatives aimed at improving cleanliness in the city, working in collaboration with local councils as part of efforts to keep pace with other cities across the country. Many attendees welcomed the timing of the event, noting that it coincided with school holidays and provided families and friends with an opportunity to spend time together.
My name is Lal Nuntluanga, and I'm just a visitor over here for the Aizawl Day, and it's been an honor and it's been a great opportunity for the vendors and the local market as well. A lot of visitors came and the tourists came.
Local shopkeepers also appreciated the initiative, saying the celebration offered both young and old residents a chance to relax and enjoy the festival.
Hello, my name is Afi. I am so glad that Aizawl Municipal Corporation is hosting Aizawl Day, the 136th year. Right now, I run this stall at the celebration venue where I sell bamboo baskets and accessories. I sell quite well, and I'm thankful that I am given a chance like this to earn money. This is a great blessing for small business owners like me.
During the event, awards were presented to 94 organizations and individuals in recognition of their outstanding contributions to the state. The celebration also featured a lively concert alongside numerous food and merchandise stalls, adding to the city atmosphere across the city. For Parik Rama, this is Isaac from Akashvani Aizawl.
Yes, and in some business news, benchmark equity indices closed around 1.3% lower today. The Sensex tanked 1,097 points to close at 78,919, while the Nifty dropped 315 points to settle at 24,450. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
In today's episode, we remember revolutionary freedom fighter Ambika Chakrabarty, who died on the 6th of March 1962. He was a member of the Indian Republican Army, which was led by Mastada Surya Sen. He later became a member of the Chittagong Jugantar Party.
বারুদ ভরা স্বপ্ন বুকে স্বাধীন হবে দেশ রে স্বাধীন হবে দেশ
On the 18th of April 1930, Chakrabarty led a group of independence activists who damaged the whole communication system in the region of Chittagong. He became severely injured in a gunfight against the British Indian Army in Jalalabad on the 22nd of April 1930, but managed to escape. A few months later, Ambika Chakrabarty was detained by the British police from his hiding place and was sentenced to death after the trial.
Later, the death sentence was altered to transportation for life to the cellular jail in Port Blair. After independence, Ambika Chakrabarty joined politics and continued to serve people till his death in 1962. We salute the great nationalist.
We also remember the freedom fighter Moturi Satyanarayana, who died on the 6th of March 1995. An ardent Gandhian, Moturi participated in the Quit India movement of 1942.
After India became independent, Moturi was a member of the Constituent Assembly of India from 1948 to 1950. He served as a member of the Committee of the Indian Constitution for its language section. Moturi was twice nominated to Rajya Sabha. He was also a member of the Madras Legislative Council and the Central Advisory Board of Education of the Government of India.
Moturi actively worked towards promoting the Hindi language in the southern part of India from 1936 to 1961. He had joined the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha as a volunteer and gradually became the secretary and principal secretary of the organization. He was the editor of Hindi Pracharak, Hindi Prachar Samachar and Dakshina Bharat. He organized many institutions all over India such as Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha of Madras and was the founding secretary of Telugu Bhasha Samiti of Madras and Hyderabad.
Moturi was a recipient of the Padma Shri Award in 1954 and the Padma Bhushan Award in 1962. Andhra University honored him with its Kala Prapurna Award in 1977. We salute the great Indian.
We also remember martyrs Bal Mukund Khuda Baksh of Delhi and Shiv Ghulam Dubey of Haryana, who participated in the First War of Indian Independence in 1857. They were executed by hanging on the 6th of March, 1858. We salute the great sons of the soil.
आज सच्चिदानंद सिन्हा जी की भी पुण्यतिथि है. डॉक्टर सिन्हा प्रख्यात अधिवक्ता, पत्रकार, शिक्षाविद और राजनीतिक कार्यकर्ता थे. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वे सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे और बाद में 1946 में पहली बार संविधान सभा की बैठक में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुने गए. उनके विचार आज भी लोकतंत्र, न्याय और समाज के आदर्शों में प्रेरणा देते हैं.
Yes, and David John Gilmour was born on this day in 1946. He is an English guitarist, singer and songwriter who is a member of the rock band Pink Floyd. He joined it in 1967, shortly before the departure of the founder member Syd Barrett. By the early 1980s, Pink Floyd had become one of the highest selling and most acclaimed acts in music history. Following the departure of Roger Waters in 1985, Pink Floyd continued under Gilmour's leadership and released the studio albums A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell and The Endless River. Let's listen into the band's hit 1975 track, Wish You Were Here.
Heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a cold steel rail?
आज पुण्यतिथि है भारतीय अभिनेत्री शमी की. इनका फिल्मी सफर शुरू हुआ 1949 में और उन्होंने अनगिनत फिल्मों में मजबूत चरित्रों को अपनी कलाकारी से जीवंत किया. उनकी अभिनय की मधुर छवि आज भी पर्दे पर जीवित है. आइए आपको सुनाते हैं शमी जी की फिल्म मल्हार का ये खूबसूरत गीत.
Yes, and Makaran Deshpande was born on this day in 1966. He's an actor, writer and director in Hindi, Kannada, Marathi, Telugu, Malayalam, Tamil films and Indian theatre. He is often seen in supporting and pivotal roles in films, and he has directed 5 films. He made his English language debut in the 2024 film Monkey Man, directed by Dev Patel. Let's listen in to a dialogue from one of his movies.
Sabne akal se kaam liya, bahut maal bana hai, aur ye imandari ki chingam khate rahe. पेट भरता है क्या उससे?
चुप रहे.
कब तक चुप रहूंगा मैं?
दिन भर गुंडा लोगों के साथ मस्ती करता है, चरस पीता है.
क्या करूं, घर में बैठ के लेक्चर पियूं तुम्हारा. अच्छा जॉब मिल रहा था दुबई में, लाखों के ढेर लगा देता. तुम्हारे पास 5,000 रुपया नहीं निकला मेरे लिए, दिल जलता है तो.
मकरंद देशपांडे ने सरफरोश, स्वदेश, मकड़ी, सत्य और डरना जरूरी है जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया.
चला चल रही यूं ही, चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया. फूल सारे झमेले देख, फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया.
Yes, and also Alice O'Connor, better known by a pen name Ayn Rand, passed away on this day in 1982. She was a Russian-American writer and philosopher. She is known for her fiction and for developing a philosophical system, which she named Objectivism. and born and educated in Russia, she moved to the United States in 1926 and she achieved fame with her 1943 novel, The Fountainhead.
और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. नमस्कार, नमस्कार।